Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
पेश है आज के संक्षिप्त समाचार ऋषाली जैन के साथ। फेडरल कोर्ट जस्टिस माइकल ली ने ब्रूस लेयरमैन के मामले में मानहानि के दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने पाया कि अनुमान के तराजू पर नापें तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि श्री लेयरमैन पर लगे हिगिन्स बलात्कार के आरोप गलत हों। जस्टिस ली ने सिडनी में आज अपना फैसला सुनाते हुए नेटवर्क 10 और पत्रकार लीजा विल्किंसन के खिलाफ इस मामले को खारिज कर दिया है। उन्होंने पाया कि नेटवर्क 10 और सुश्री विल्किंसन ने जो श्री लेयरमैन के खिलाफ बलात्कार के इल्ज़ाम के कई साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं वे सत्य हैं। लीजा विल्किंसन ने फेडरल कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। आज का ये फैसला सुश्री विल्किंसन की फरवरी 2021 में द प्रोजेक्ट पर की गई एक रिपोर्ट के बाद आया है। ये फैसला 1 अप्रैल को किया जाना था लेकिन आखिरी समय पर आज के लिए स्थगित कर दिया गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि नेटवर्क 10 के पास कुछ बड़े साक्ष्य सामने आए थे। वहीं बॉन्डाई जंक्शन वेस्टफील्ड शॉपिंग सेंटर को चलाने वाले समूह के मुख्य सचिव ने आज बॉन्डाई स्टैबिंग हमले में जान गंवाने वाले लोगों के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सेंटर ग्रुप के मुख्य सचिव इलियट रसनाओ का कहना है कि समूह इस बात की समीक्षा कर रहा है कि कैसे 40 वर्षीय जोएल काउची शनिवार को चाकू लेकर मॉल के अंदर आ सके और 6 लोगों की हत्या कर डाली। उनका कहना है कि उनकी प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। मरने वालों में वेस्टफील्ड के सिक्योरिटी गार्ड फराज ताहिर भी शामिल हैं जिनकी नौकरी पर ये पहली ही शिफ्ट थी। श्री रसनाओ का कहना है कि हमले के बाद समूह के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सभी मॉल्स की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ितों के परिजनों को मॉल सार्वजनिक रूप से खुलने से पहले एक बार मॉल के दौरे का मौका भी दिया जाएगा। मॉल हमले में जान गंवाने वाले 6 लोगों की पहचान अब खोल दी गई है। चारों ओर से इन लोगों के लिए शोक संदेश भी आ रहे हैं। 27 वर्षीय यीशुआन चेंग चाइना से आए थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में अर्थशास्त्र के मास्टर्स की डिग्री के छात्र थे। वे हमले में मारे जाने वाले 6 व्यक्ति थे। चीन के कार्यकारी कौंसिल जनरल ने सिडनी में कहा कि इस खबर का उन्हें बहुत दुख है और यह कि वे परिजनों के साथ मिलकर जरूरी इंतजाम करवाएंगे। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के कमिश्नर एंथनी कुक ने बताया कि 2 और पीड़ितों के परिवार विदेश में हैं जिनसे संपर्क किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के कॉम्पिटिशन रेगुलेटर का कहना है कि मार्केट सेक्टर का प्रभुत्व तोड़ने के लिए अमेरिका की तरह ही डाइवेस्चर कानून लाने की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर कमीशन यानी ACCC के प्रथम अध्यक्ष एलन फेल्स ने सुपरमार्केट दामों पर बैठी एक संसदीय जांच में ये बयान दिया कि राशन के वो बाजार जो कॉम्पिटिशन कानूनों का उल्लंघन करते हैं उनको विनिवेशित करने के आदेश दे दिए जाने चाहिए। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक में इजराइल और ईरान एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। ये तब आता है जब ईरान ने इजराइल से बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला कर दिया था। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर मध्य पूर्व में सबसे बड़ा खतरा होने का आरोप लगाया और सुरक्षा समिति से एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। ईरान ने इसराइल पर 300 से अधिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया था। ये हमला सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले के बदले के रूप में किया गया। ईरान का कहना था कि ये डमास्कस में ईरानी दूतावास पर हुआ हमला इसराइल ने ही किया था। संयुक्त राष्ट्र में इजरायली दूत गिलाड अर्डन ने ये कहा कि हमला दिखाता है कि ईरान वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का सबसे बड़ा खतरा है। वहीं ईरानी दूत अमीर सईद इरवानी ने जोर देकर के कहा कि उनका देश केवल अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठा रहा था। और अंत में खबरें भारत से। पश्चिम एशिया में बढ़ रहे तनाव के बीच सीरिया में अपने दूतावास पर हवाई हमले के जवाब में ईरान द्वारा इसराइल पर हमले और अब स्थिति के बदतर होने के साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक बयान दिया है। उनका कहना है कि वैश्विक शत्रुता और युद्ध की आशंका के बीच केंद्र में उनकी सरकार के लिए प्राथमिकता संघर्ष क्षेत्रों में साथ ही भारतीयों के जीवन को सुरक्षित करना होगा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी द्वारा घोषणा पत्र जारी किए जाने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि इससे सरकार को वैश्विक चुनौतियों से निपटने और विदेश में फंसे भारतीय मूल के निवासियों को बचाने में मदद मिलेगी। उनका बयान था कि ऐसे समय में जब युद्ध का डर दुनिया पर छाया हुआ है, पूर्ण बहुमत के साथ एक मजबूत और स्थिर सरकार का चुना जाना और भी आवश्यक है। हमारे पास एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो देश को आर्थिक रूप से मजबूत और अधिक लचीला बनाए। वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए हमें विकसित भारत के अपने अंतिम लक्ष्य को पाना होगा, कदम बढ़ाने होंगे और अगर भाजपा फिर से चुनी जाती है तो इसे पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसी के साथ 15 अप्रैल 2024 के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। दीजिए वृषाली को इजाजत। नमस्कार।
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.